ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण तथा पराली जलाने की समस्या का ढांचागत समाधान निकालने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर राजधानी में कथित तौर पर बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए समय मांगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियों की उचित जांच करने के बाद ही उनमें संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है और दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस इकोसिस्टम में दो बड़े सुधारों की मंजूरी दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण तथा पराली जलाने की समस्या का ढांचागत समाधान ढूंढने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसे लोगों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने हानिकारक पर्यावरण स्थितियों का समाधान निकालने का आग्रह किया जिससे दिल्ली NCR को हर वर्ष सामना करना पड़ता है। संसाधनों और ऊर्जा की जिम्मेदारी के साथ उपभोग के महत्व पर बल देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि इनका सर्वोत्तम उपयोग करना सभी नागरिकों का दायित्व है।
We must get into innovation mode, find a systemic solution. It should not be left to individuals. The system must come of age. I've been assured by the director, IIT Kanpur, that he'll look into the matter. Everyone must converge to contribute what he or she can.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे इस सम्मेलन को कल संबोधित करेंगे। 3 दिन का ये आयोजन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना तथा इसमें सुधार करना है। इस सम्मेलन में केंद्र तथा राज्य सरकारों की भागीदारी को और मजबूत करने तथा सहकारी संघवाद और तेज आर्थिक वृद्धि तथा विकास में बेहतर समन्वय बनाने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तथा विषय विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य सचिवों का सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का मुख्य विचार है। सम्मेलन का विषय प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसके अंतर्गत 6 क्षेत्रों, विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर खेती, शहर, नवीनीकरण ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में कथित तौर पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हैं, एयरपोर्ट तथा स्कूल को धमकी मिल रही है और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधों में 350% की बढ़ोतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री से आग्रह भी किया कि राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है जिसकी वजह से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। इस बीच भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने श्री केजरीवाल के पत्र पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी अप्रवासियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने में मदद कर रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकालने का प्रयास कर रही है।
मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली में बांग्लादेशी, दिल्ली में रोहिंग्या को आपके विधायक ने, आपके मंत्रियों ने बसाने का काम किया है और जो लोग दिल्ली में दंगा करते हैं, क्राइम करते हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो लोग यहां से निकलें और केजरीवाल जी उनको बचाने का काम करते हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए घोषित मासिक भत्ते की जानकारी मांगी है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि 2022 में चुनावी अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी की घोषणा की थी जिसमें महिलाओं को 1,000 रूपये प्रति महीने देने का वायदा किया गया था।
बहुत विनम्रता के साथ उस सच को जानने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप हमको ये जानकारी दें और बताएं पिछले फरवरी 2022 से आज दिसंबर 2024 तक कितनी माता और बहनों को 1,000 की राशि दी गई है।
इस पत्र में श्री सचदेवा ने आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब सरकार से घोषित मासिक भत्ते की स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध भी किया है। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि लगभग 3 साल बाद भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को मासिक भत्ता देना शुरू नहीं किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कल राजधानी में झुग्गी क्लस्टरों में रात्रि प्रवास करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल ने कहा कि लगभग 1000 झुग्गी क्लस्टरों में पार्टी कार्यकर्ता प्रवास करेंगे। इस अभियान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के साथ प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, निगम पार्षद भी प्रवास करेंगे। इस संदर्भ में पार्टी द्वारा सोशल मीडिया में जारी सूची में बताया गया कि श्री सचदेवा पूर्वी दिल्ली झिलमिल में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम आरामबाग में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बादली में, सभी सांसद, विधायक और पार्षद अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़ी झुग्गी बस्तियों में प्रवास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियों की उचित जांच करने के बाद ही उनमें संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। पत्र में मतदाता सूची से अवैध और अप्रवासी तथा फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने के भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे का जिक्र किया गया है। आयोग ने पत्र में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आम आदमी पार्टी के कथित आरोपों को भी साझा किया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा है कि फॉर्म 7 को भरे बिना मतदाता सूची से नाम नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने कहा कि फॉर्म 7 सभी प्रकार के दावों और आपत्तियों को नियमित रूप से सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाना चाहिए और इसे दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना की आलोचना की है। मीडिया के साथ बातचीत में आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अब तक महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पंजाब में भी यही वादा किया था। श्री दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव में हार के चलते इस योजना की घोषणा की है।
पंजाब में प्रॉमिस किया था आम आदमी पार्टी ने कि हम महिलाओं को 1500 रुपया 2000 रुपया महीना देंगे, वहां तो दिया नहीं आप। कांग्रेस ने तो अपने राज्यों में पहले से इसको क्रियान्वित कर दिया। आप तो 10 साल से यहां हो और कम से कम 2-3 साल से आप वायदा कर रहे हो, तो अभी तक क्यों नहीं किया? ये तो केवल छल है ना। एक सिर्फ चुनाव आ गया और पूरी खबर आ रही है कि चुनाव में अब की बार आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। तो जब आपको लगता है कि आप हारने वाले हैं तो एकदम आपको ये स्कीम याद आ गई।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास किया। श्री गुप्ता ने इंसुलेटेड वायर शिफ्टिंग, पार्कों में बच्चों के लिए झूले और युवाओं के लिए फिटनेस के लिए ओपन मल्टी जिम के कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र के निगम पार्षद प्रवेश वाही और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्नातक और परस्नातक की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए धारा 163 लागू की गई है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में ये धारा लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ये आदेश उक्त परीक्षाओं के संपन्न होने तक लागू रहेगी। दिल्ली के आरकेपुरम स्थित एक निजी स्कूल को आज सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस, बम का पता लगाने वाला दल और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अग्निशमन के अधिकारी ने बताया कि धमकी फर्जी थी। राष्ट्रीय राजधानी के 30 से अधिक स्कूलों को कल बम की फर्जी धमकी मिली थी। सूचना मिलने पर स्कूलों को खाली कराया गया था और बम निरोधक दस्ते ने वहां जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस इकोसिस्टम में दो बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। निगम के इस सुधार से फैक्ट्री परिसर के विभिन्न मंजिलों पर उत्पादन करने वाले फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और फ्लोर वाइज फैक्ट्री लाइसेंस की आवश्यकता वाली नीति युक्ति संगत भी बनेगी। इस मंजूरी के बाद निगम अब पुनर्वासित औद्योगिक इकाइयों के वास्तविक उपयोगकर्ता और किराएदार को फैक्ट्री लाइसेंस देना आरंभ करेगा, जिससे 25,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में चल रहे पुस्तकायन पुस्तक मेले का कल अंतिम दिन है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम मेले में सांस्कृतिक और व्यंग्य पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपनी पसंद के लेखकों और कवियों द्वारा लिखी गई किताबें खरीद रहे हैं। साहित्य अकादमी ने पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुक दक्ष तलवार ने बताया कि उन्हें इस मेले में दक्षिण भारत से जुड़ी कई अच्छी पुस्तकें मिली।
हिंदी पाठकों के लिए अच्छी किताबें हैं, साहित्य से संस्कृति से रिलेटेड अच्छी किताबें हैं। साउथ इंडिया की जो संस्कृति है उनसे रिलेटेड काफी अच्छी किताबें हैं, जैसे कांतारा या उनके संस्कृति के बारे में, जतारा जैसे फेस्टिवल्स के बारे में किताबें हैं।
वहीं मेले में उत्तराखंड से आए कलाकार परितोष जोशी ने बताया कि उन्हें यहाँ चर्चित किताबों के अलावा ऐसी किताबें भी मिली जिनकी चर्चा युवाओं के बीच नहीं है।
चार किताबें ले चुका हूँ। ये एक है विनोद कुमार शुक्ल की दीवारों में खिड़की रहती थी, और उसके अलावा शिवाजी के ऊपर एक किताब ली। उसके अलावा हमने एक मुसाफिर कैफे ली है दिव्य प्रकाश दुबे जी की, और उसी के साथ साथ अतुल कुमार राय इनकी चंदापुर की चंदा, ये हमने ली है।
प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उल्लेख किया कि अभिव्यक्ति और संवाद एक दूसरे के पूरक है और दोनों के बीच सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है।
From the erosion of meaningful dialogue and authentic expression, अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण, अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सामंजस्य से ही सफलता की कुंजी है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के दृष्टिकोण को बदलकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन के बाद ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।
जो न्यू वर्ल्ड आ रही है उसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में भारत में स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, ये बहुत ही एक सिल्वर लाइन है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। सीबीएसई स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स ज्यादा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति दृढ़ता और आशा का प्रतीक है तथा महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना भारतीय सभ्यता के अभिन्न मूल्य है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और विशेष स्टॉक फोर्स के साथ एक संयुक्त अभियान में आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कुख्यात अपराधी और हाशिम बाबा गिरोह के सदस्य सोनू मटका को मारा गया। सोनू मटका पर पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत नए रूट पेट्रोलिंग वाहन शुरू करने की योजना बना रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये वाहन आपातकालीन स्थिति को निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों का निरीक्षण करेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा प्रतिज्ञा की घोषणा की है। ये दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दिल्ली में आज सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप निकली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के महीने में आमतौर पर खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप को संशोधित किया है। इस संशोधित ग्रैप के अंतर्गत तीसरी और चौथी श्रेणी में आने वाले लक्षित कार्रवाइयों को अब दूसरी और तीसरी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण तथा पराली जलाने की समस्या का ढांचागत समाधान निकालने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर राजधानी में कथित तौर पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियों की उचित जांच करने के बाद ही उनमें संशोधन करने और नाम हटाने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस इकोसिस्टम में 2 बड़े सुधारों को मंजूरी दी। और नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में चल रहे पुस्तकायन मेले का कल अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।